गार्ड के धक्का देने पर ज़ोया गिरने ही वाली थी, तभी अरमान ने उसे पकड़ लिया था। उसके हाथ ज़ोया की कमर पर थे और ज़ोया ने अरमान की बाहों में अपना सिर छिपा लिया। डर के मारे ज़ोया की आंखें बंद हो चुकी थीं। अरमान उसे एक टक निहार रहा था और ज़ोया को इतने करीब पाकर वो उसके होंठों के पास बने निशान को भी देख लेता है और गुस्से की वजह से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेता है। तभी वो गार्ड जिसने ज़ोया को धक्का दिया था, अरमान और ज़ोया को साथ देखकर डर के मारे कांपने लगा। वो समझ गया था कि जिसके लिए अरमान ठाकुर खुद बाहर आया है वो कितनी खास होगी अरमान के लिए। और वैसे भी आज तक बड़े बड़े लोग, सिटी कलेक्टर, MLA, IAS अधिकारी, IPS, न जाने कितनी ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग अरमान से मिलने कितनी बार आए थे। अरमान का मन होता था तो वो मिलता था, वरना गेट से ही चलता कर देता था। और ये क्या, एक साधारण सी लड़की के लिए अरमान ठाकुर खुद बाहर आया था, तो इसका मतलब साफ था ये कोई आम लड़की नहीं थी। ज़ोया, आंखें खोलो, आप बिल्कुल ठीक हो, अरमान ने कहा। अरमान की आवाज़ सुनते ही ज़ोया ने अपनी आंखें खोलकर देखा और उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो इस वक्त अरमान के बेहद करीब है। वो जल्दी से उससे अलग हुई और अपने कपड़े ठीक करती हुई सलीके से खड़ी हो गई। अरमान ने एक नज़र अपने गार्ड्स पर डाली। ज़ोया, आप ठीक तो हो ना? और क्या हुआ आप अचानक? सर, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। बट आपके गार्ड शायद कुछ ज़्यादा ही वफ़ादार हैं, इन्होंने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। इनको लग रहा था मैं यहाँ आपसे पैसे मांगने आई हूँ, ज़ोया ने तंज करते हुए कहा। अरमान ने एक बार फिर नज़र उठाकर पास ही खड़े एक गार्ड को घूर लिया जिसने ज़ोया को धक्का दिया था। अरमान के अंदर एक आग सी जल रही थी। अरमान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था कि गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं आने दिया। अरमान को फ़र्क केवल एक बात से पड़ा था कि उस गार्ड ने ज़ोया को छुआ था, चाहे धक्का देने के लिए ही सही, पर छुआ था। अरमान की आंखें देखकर गार्ड सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा, लेकिन अरमान ने उस वक्त उसे कुछ नहीं बोला और ज़ोया को लेकर अंदर की ओर चल दिया। इतना आलीशान बंगला ज़ोया ने कभी नहीं देखा था। चारों ओर इतने गार्ड्स थे मानो कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहता हो। ज़ोया सरसरी सी नज़र सब पर डालते हुए आगे बढ़ रही थी। जल्दी ही वे दोनों मेन गेट तक पहुँच गए थे। अरमान ने सोचा था कि जब भी ज़ोया पहली बार उसके घर आएगी वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाएगा, लेकिन आज ज़ोया का यूं अचानक आना अरमान को उसका सपना टूटता हुआ महसूस हो रहा था। तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे पर वही खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। ज़ोया अरमान के पीछे पीछे चल रही थी और वो आगे कम आसपास ज़्यादा देख रही थी। अरमान के घर का गार्डन सच में बहुत ही खूबसूरत था और बेहद सुंदर फूलों से कमाल के डिज़ाइन बनाए गए थे और चारों ओर अनगिनत कार्ड्स थे। ज़ोया हैरानी से चारों ओर देख रही थी। तभी अरमान चलते चलते अचानक रुक जाता है। ज़ोया, जो बिल्कुल अरमान के पीछे थी, वो एकदम अरमान से टकरा जाती है, अपना बैलेंस खो देती है और वहीं गिर जाती है। अरमान जो चाहता था वो हो गया था। फिर वो ज़ोया से, ओ मिस ज़ोया, आपको लगी तो नहीं, कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ज़ोया कुछ पल रुककर अरमान का हाथ थाम लेती है, लेकिन वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है उसकी एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, क्योंकि अचानक गिरने की वजह से उसका पैर मुड़ गया था और उसे मोच आ गई थी। तब अरमान उसके पास जाता है और देखता है कि ज़ोया का पैर सूज गया था। फिर वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूँगी, आप परेशान नहीं होइए, ज़ोया कहती है। लेकिन अरमान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे उठाकर अंदर ले जाता है। ज़ोया की आंखें बंगले को अंदर से देखकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरमान का घर अंदर से किसी 5-स्टार होटल से भी ज़्यादा खूबसूरत था। जिस होटल में ज़ोया ने काम किया था वो फीका पड़ गया था अरमान के घर के सामने। बहरहाल, अरमान ने ज़ोया को हॉल में ही पड़े एक सोफे पर बिठाया और अपने एक मुलाजिम को आवाज़ देते हुए कहा, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ और साथ ही साथ आइस पैक भी लेके आना। सर, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, प्लीज़ आप मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है, ज़ोया कहती है। अरमान बीच में ही, श, मिस ज़ोया, थोड़ी देर चुप करके बैठो, कहता है। अरमान ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा था। ज़ोया थोड़ा सहम जाती है और अरमान को देखने लगती है। ज़ोया कुछ कह नहीं पाती। तब तक सर्वेंट दवा का बॉक्स और साथ ही आइस पैक लेकर आ गया था। अरमान खुद ज़ोया के सामने नीचे घुटनों के बल बैठ गया था। उसने धीरे से ज़ोया का पैर अपने घुटने पर रखा और पहले ज़ोया की बर्फ़ से सिकाई की और फिर पेन किलर स्प्रे किया। अब ज़ोया को काफ़ी हद तक आराम आ गया था। तब ज़ोया अरमान से कहती है, सर मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ मिस ज़ोया, हम ज़रूर बात करेंगे, पर उससे पहले आप बताइए आप क्या खाना पसंद करोगी, आप पहली बार मेरे घर आई हैं। सर, आप मेरी बात सुने प्लीज़, मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसे कैसे, कुछ नहीं खाना है, आप पहली बार मेरे घर आई हैं, अरमान कहता है। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं खाना है, ज़ोया को अब अरमान का व्यवहार अजीब लगने लगा था। और तभी अरमान ज़ोया का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर ले जाता है। टेबल पर हर वैरायटी का खाना मौजूद था। जोया मन ही मन में सोचती है, नाश्ते में इतनी चीजें भला कौन खाता है। अरमान खुद जोया को सर्व कर रहा था और ना चाहते हुए भी जोया को थोड़ा सा ही सही पर खाना पड़ा। हॉल में मौजूद अरमान के सभी नौकर अपने मालिक को हैरानी से देख रहे थे। पहली बार उस बंगले में कोई लड़की आई थी और उसके लिए उनके बॉस का स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोगों को एहसास करा चुका था कि ये लड़की उनकी होने वाली नई मालकिन है। तभी जोया अरमान से कहती है, सर मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे कब से बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुने। इस बार जोया ने थोड़े तल्ख लहजे में बोला था। अरमान जोया की बात को अनसुना करता हुआ अपना फोन निकालकर कुछ टाइप करने लगता है। जोया को अपनी बात को इस तरह से अनसुना होता देख गुस्से से खड़ी हो जाती है और अरमान से कहती है, सर मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। आप आराम से अपना काम कर लीजिए, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। ऐसा कहती हुई जोया दरवाजे की ओर जाने के लिए बढ़ गई। तभी अचानक